हे कृष्ण भगवान, कृपा करके आप मेरे मन के मंदिर में निवास कीजिए। मैं केवल आपके ही आनंद के लिए, आपके ही संतुष्टि के लिए गीत गाऊंगा, जिससे आप प्रसन्न हो जाएंगे, आपको आनंद प्राप्त होगा। यही मेरा उद्देश्य रहेगा। मेरे हृदय में जो भक्ति है, प्रेम है, वो मैंने केवल आपके लिए संभाल के रखा है। वो केवल आपके लिए संभाल के रखी हुई जो भक्ति है, प्रेम है, फूलों की माला है, चंदन है, हे कृष्ण भगवान, हे मुरारी, हे नंद कुमार, आप कृपया स्वीकार कीजिए। आप मेरे जीवन और मरण है। हा? जीवन मरण तोरा पूजा निवेदन। मेरा जीवन ही आप है, मेरे सांस में आप है। आप मेरे पूजनीय है, आपके चरण मेरे लिए पूजनीय है, वहीं पर मेरा समर्पण है। मैं अपने जीवन को आपके चरणों में समर्पित करना चाहता हूं, क्योंकि हे कृष्ण, हे नंद कुमार, आप बहुत सुंदर हैं। मेरे मन को, हृदय को आपने मोह लिया है, आकर्षित कर लिया है। मैं अभी आपकी आरती गाऊंगा, और कैसे आरती करूंगा? प्रेम के अश्रु से दीपक जलाऊंगा और उस दीपक से आपकी आरती उतारूंगा। यानी कि मेरे दीपक में तेल नहीं होगा, आपके प्रति जो प्रेम की वजह से बहने वाले अश्रु हैं, वही मेरे दीपक का ईंधन रहेगा और उस दीपक से मैं आपकी आरती उतारूंगा। हे प्रिय गिरधारी, आपके विरह में मैं अश्रु बहा रहा हूं। मेरे आंखों से नदी के समान अश्रु बह रहे हैं, क्योंकि आपका विरह मेरे अंतःकरण को बहुत दुख देता है। श्री कृष्ण भगवान की जय। संतों का संग यही है, क्योंकि संत जब कविता करते हैं, जब उनको हम गाते हैं कविता को, तो संत का शरीर से ना होते हुए भी हम संग करते हैं, क्योंकि उनकी भावना जो है उन्होंने इस भजनों में व्यक्त की है, और उन भावनाओं के, विचारों के आधार पर हम उनका संग करते हैं, उन्हीं की भावनाओं को पकड़ने का प्रयास करते हैं। कैसे वो सोचते हैं, उस तरह से सोचने का प्रयास करते हैं। इसलिए हमको भजन भी बड़े उत्साह से गाना चाहिए, हृदय से, ताकि उसके भाव को हम पकड़ सके। इस तरह से हमारी कथा आगे बढ़ती है। कभी गंगा जी, गोदावरी जी प्रकट हुई है, और जैसे ही वो वंदन कर रहे हैं, वो लुप्त हो जाती है। तो फिर वो प्रार्थना करते हैं, फिर शिव जी उनको विनती करते हैं, क्योंकि उनको, मैं बता रहा था आपको ये बात, कि उनको इस विश्व में आने में रुचि नहीं होती है, क्योंकि वो जानते हैं कि यहाँ के लोग पापी हैं, स्नान करेंगे, हमें दूषित करेंगे। फिर उसके फलस्वरूप उन्होंने कहा कि डोंट वरी, हम आपके साथ रहेंगे, हमारा संग आपका बना रहेगा, और जो संत लोग आप में स्नान करेंगे, तो जो पाप लोगों ने आपके अंदर छोड़ दिया है, उस पाप से आप मुक्त हो जाएंगे। क्योंकि संत लोग जो है वो पापहारी होते हैं, उनके संग से भी, नदी से भी अधिक बहकर पाप का नाश होता है। नदी में स्नान करने से पाप का नाश होता है, लेकिन संतों के मुख से जो नदी बहती है उपदेश की और साक्षात्कार की, उसमें उससे भी अधिक प्रभावी रीति से पाप का नाश होता है। तो वो संत लोग आप में स्नान करेंगे, और आप ऐसे पापों से फिर मुक्त होती रहेंगी। इसलिए गंगा, यमुना, सरस्वती सब नदियां तैयार हो गई आने के लिए। फिर वे पृथ्वी प्रभावित हो गई और सब धरातल को पवित्र करते हुए सागर में जाके मिली। तो फिर वो इस प्रार्थना से और इस आश्वासन के कारण वो औदुम्बर के वृक्ष में प्रकट हो जाती है। एक साथ दो जगह प्रकट होती है। एक जगह है गंगा द्वार, जो बिल्कुल जटाओं की जो जगह है उसके बीच में है, ब्रह्मगिरी के बीच में है वो जगह, जहां पर गंगा जी प्रकट हुई है। साथ साथ में औदुम्बर वृक्ष में भी प्रकट हुई है। तो वहां से जब प्रकट हुई, तो एक राक्षस प्रकट हो गया, कुलासुर। बहुत भयंकर राक्षस था वो, जानता था इसकी महिमा कितनी है। तो उसने इच्छा की कि सारी नदी को मैं पी जाऊंगा अपने मुख से। तो ये बहुत संकट आया बीच में। तो तुरंत गौतम ऋषि ने देखा, गौतम ऋषि का अभी तक काम पूरा नहीं हुआ है, अभी स्नान करना बाकी है उनको, तब तक उनको अपना काम बनाए रखना है, हमको ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि बोलते ना चिकाटी, मराठी में बोलते ना परसेवरेंस, टेनेसिटी, मतलब बहुत चिकट प्रवृत्ति से अपने लक्ष्य की ओर बने रहना, इतना भी कष्ट आए, तकलीफ आए, भक्ति में बहुत जरूरी है। निराशते हुए, अरे नदी को प्रकट कर लिया, इतनी मेहनत करने के बाद भी प्रकट हुआ, लुप्त हो गई, छोड़ नहीं दिया, फिर तपस्या में बैठे, फिर प्रार्थना किया, फिर प्रकट किया। अभी स्नान करने वाले थे तो राक्षस बीच में आया और वो उसको पीने की कोशिश करने लगा। तो फिर उन्होंने तपस्या में बैठे, और कोई तपस्या कुछ घंटों की नहीं है, दो घंटा किया फिर देवी आ गई, दो घंटा किया फिर गंगा जी आ गई, दो घंटा किया फिर शिव जी आ गए, ऐसा नहीं है। कई साल से तपस्या करनी पड़ती थी। फिर इस समय तपस्या की तो उन्होंने देवी की आराधना की, दुर्गा देवी की, और देवी को प्रार्थना की कि इस राक्षस का वध कीजिए। तो देवी का राक्षस का घमासान युद्ध हो गया और देवी ने कोलासुर को मार डाला। और जैसे ही वो मर रहा था तो उसने ओम नमः शिवाय करके शिव जी को प्रणाम किया। तब उनको ध्यान में आया कि मेरे पतिदेव का बड़ा भक्त है ये, तो उन्हें कहा अभी क्या वरदान चाहिए, तेरी मृत्यु तो निश्चित है, मैंने तुमको मार दिया है, वरदान मांगो। तो कोलासुर कहता है कि मेरे नाम से आप यहां पर रहिए, मतलब आप यही निवास कीजिए और मेरा नाम आपको दीजिए, मतलब उनका नाम होता है कोलाम्बिका देवी, कोला अंबिका, और कोलाम्बिका मंदिर भी वहां पर विराजमान है। और उनको प्रसन्न करने के बाद में, कोलासुर के वध होने के बाद में, फिर वापस गंगा जी मुक्त हो जाती है। तो फिर उनको आने की इच्छा नहीं यहां पर, तो वो अलग अलग धारा में बह रही है, एक संद नहीं बह रही, कहीं यहां बह रही है, एकदम इसे स्वैर बह रही है। तो कुछ तो क्या करते हैं तो वो गौतम ऋषि का एक बड़ा विशेष तत्व यह है कि हर एक बहुत सारे काम वो दर्भांगों से करते थे। तुरंत दर्भांग उठाते हैं कुशग्रास से, कुशग्रास के भी खतुरी कथा बताता हूं मैं। जब भी पृथ्वी को हिरण्याक्ष ने लत्ता प्रहार करके अपने कक्षा से विस्थापित कर दिया और वो गर्भदक सागर में गिर पड़ी, तब ब्रह्मा जी के नासिका से अंदर से वराह देव ने अवतार लिया, नाक से निकले और बड़े बड़े होकर विशाल काय धारण किया उन्होंने शरीर। सबसे पहले उस वराह रूप ने गर्भोदक सागर में कूद लगाई और तल में जाकर उन्होंने अपने सिंहों पर पृथ्वी को उठाया और अपनी कक्षा में रख दिया। तो फिर वो गीला हो गया होगा ना, जो सुअर के रूप में, मतलब पिग के रूप में, वराह के रूप में उन्होंने अवतार लिया था, जो ही केवल गंदे जल में प्रवेश कर सकता है ना, और कोई प्राणी का स्वरूप नहीं जो गंदे जल में प्रवेश कर सकता है। तो भगवान ने हमारे उद्धार के लिए, मतलब हम लोग पृथ्वी पर निवास करते ना, हम सब लोग जल में थे उस समय, तो हमारे उद्धार के लिए वराह देव का रूप देकर गंदगी में जाकर पृथ्वी को कीचड़ से उठाया और अपने कक्षा में स्थिर कर दिया, और सब उनके अंदर जल था उस समय, और वो जल भी जो उनके स्पर्श से पवित्र हो गया। और कोई प्राणी जब निकलता है पानी से, कैसे करता है वो, ऐसा करता है ना, पानी सब उड़ा देता है। तो जब वराह देव ने उसको शरीर को हिलाया, कंपन दिया, और जितने भी जल बिंदु ऐसे उछल गए सब जगह पर, और जहां जहां पृथ्वी पर गिरे वहां पर ये कुशग गवत जो है उसका निर्माण हुआ। तो हम लोग जो यज्ञ में लगाते ना, पवित्र लगाते हैं ना, यहां पर कुशग बहुत पवित्र माना गया है, इतना पवित्र है वो कि सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, खंडग्रास, खग्रास, जितना भी भयंकर ग्रहण होते हैं वो सबके अंदर आपके अगर दरवाजे के एक एक अगर वो घास का टुकड़ा लगाया होगा तो घर में कुछ शुद्धि करने की जरूरत नहीं आपको, ना आचार में रखने की, ना जल में रखने की, ना धान्य में रखने की, तुलसी पत्र को जरूरत नहीं। अगर आपके पास कोई कुश का आसन है जहां पर हम लोग बैठ के यज्ञ करते हैं ना, उसको कुश आसन कहते हैं। वो अगर आसन आपके घर में है या आपने कहीं टेबल पे रखा है या आप पूजा पाठ करते हो तो आपके घर में कहीं कोने में रखा हुआ है, तो आपके घर में कोई अपवित्रता नहीं आती है ग्रहण की वजह से। और ये हर यज्ञ में, हर पूजा कार्य में, हर विधि में इसकी जरूरत होती है। उसका एक कच्चा स्वरूप है दुर्वा, जब वो सूखा हो जाता है तो फिर उसको दर्भांगकुर कहते हैं, कुशा कहते हैं। तो ये कुश को इस्तेमाल करने में गौतम ऋषि बहुत कुशल थे। तो पहले भी उन्होंने क्या किया, वो गाय जब आए तभी कुश से उसको थोड़ा सा दूर करने का प्रयास किया। तो इसी कुश को लेते हुए, मंत्र उच्चारण करते हुए, उन्होंने दूर से ही सारे उसके प्रभाव को, आप यहां बैठे हैं नदी वहां पर ऐसे से भाग रही है, तो उन्होंने यहां से उसको रिमोट कंट्रोल में उसको सभी प्रभावों को एकत्र किया और वहां से भी वो लुप्त हो गई। तो उन्होंने उसको एकत्र करके एक जगह जमा कर दिया, उसका नाम है कुशावर्त। कुश से आधार से उन्होंने गंगा जी को आवृत कर दिया और एक जगह समेट लिया। तो गंगा जी जो है वो वहां से प्रवाहित नहीं है, फिर वहां से लुप्त हो जाती है और फिर वो कुशावर्त प्रकट हो जाती है। तब नीचे जाएंगे कुशावर्त धाम जो है, वहां पर गौतम जी ने अपने तपोबल से इस नदी को एकत्र किया है और सबसे पहले उसको प्रकट स्वरूप दिया है, वहां पर भी वो स्नान करते हैं, वहां पर उनका जो उद्देश्य है वो सफल हो जाता है। तो वहां पर एक शेषशायी की मूर्ति, आप जब जाएंगे नीचे, मैं जानबूझ के आपको वहां लेके नहीं गया, आपको पता नहीं चला क्या देख रहे हैं आप, इसलिए आपको मैंने यहां पहले बताऊंगा फिर आप दर्शन करना आके। चौकोनी कुंड है वो, और ऐसे कहा गया है कि सारे जितने भी तीर्थ हैं, जितने पहाड़ हैं पवित्र, जितनी नदियां हैं, वो सब उसमें प्रकट हो गई हैं उसके बाद में। क्योंकि जैसे ही गोदावरी ने वर मांगा ना शंकर जी से, तो उन्होंने क्या कहा उनको कि सारे ऋषि, सारे देवता, सारे धाम, सारे तीर्थ, सारी नदियां आपके यहां निवास करेंगे, तो सब वहां पर प्रकट हुए हैं, इसलिए वो बहुत दिव्य क्षेत्र माना गया उसको। तो उसके एक कोने में शेष शाही विष्णु भगवान का मूर्ति है और उस मूर्ति के चरण के नीचे से वो प्रवाह आ रहा है जो यहां पर लुप्त हो गया है अवदुम्बर के वृक्ष में और गंगा द्वार में प्रकट हुआ है, वहां के लुप्त होकर वो फिर वहां प्रकट हुआ है। और ऐसे भी ये सत्य है कि जो त्र्यंबकेश्वर का शिवलिंग है जहां पर आपने दर्शन किया अभी, उसके नीचे से भी वो दर्शन है उसका, कुछ जल जो है धारा उसमें से निकलती है, लेकिन वो केवल पुजारी देख सकते हैं, हम लोग नहीं देख सकते, बहुत दूर होता है ना देखने के लिए। तो इस तरह से गौतम ऋषि गौ हत्या के पाप से मुक्त होते हैं और तुरंत वो जो मरी हुई गाय है वो जीवित हो जाती है। ये सब लीला भगवान ने क्यों किया, सब इतना सब इतना सारा योजना इतना सारी लीलाएं सम्मिलित करके, ताकि हम सबका उद्धार हो जाए। केवल हम सबका कल्याण ध्यान में रखते हुए भगवान इतनी सारी योजना देवताओं को बुद्धि देकर उनके द्वारा बनाते हैं, हम लोगों को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम लोग फिर भी नहीं 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 कहते हैं, नहीं चाहिए कृपा, हमको यहाँ का भोग चाहिए, यहीं रहेंगे, यहाँ का आनंद लेंगे, बार बार शरीर धारण करेंगे, यज्ञ करेंगे, स्वर्ग में जाएंगे, वहां का नंदनवन का आनंद लेंगे, अप्सराओं के साथ भोग करेंगे, अच्छे अच्छे वस्तुएं खाएंगे, अच्छे अच्छे बागों में घूमेंगे, हवाई जहाज में पुष्पक विमान में घूमेंगे, ऐसे हमारे मन में विचार कामना रहती है, हम लोग यहीं पर फंसे रहते हैं, तड़पते रहते हैं, बार बार आके हमारा अकाउंट जीरो कर देते हैं वो, लेकिन फिर हमारा नया अकाउंट बनता है अनंत पापों का। इसलिए ये जो भगवान की और देवताओं की नदियों की कृपा हम पर है उसको हमको ऋणी रहना चाहिए, वी शुड बी ग्रेटफुल। जैसे आप कोई हमारा बच्चा है कुछ गुनाह कर देता है तो हम उनको दंड देते हैं, बोलते दोबारा नहीं करना है, क्यों कहते हैं एक बार माफ कर दिया अभी दोबारा नहीं करेंगे तो आपका फिर दंड जो है वो पूरा यशस्वी हो गया। क्योंकि बालक क्या करता है, बार 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 वही करता है, बार बार डंडे खाता है, फिर भी वही करते रहता है और जिंदगी में डंडे खाते रहता है। हम लोग उन बालक की तरह है, बार बार हमको सजा मिलती है, माफी भी मिलती है, फिर भी हम लोग सुधरते नहीं है। इसलिए अभी हम जब संतों के संग में आते हैं तो हमको ऋणी होना चाहिए कि हमको इतनी कृपा मिल रही है, इतना ज्ञान मिल रहा है, इतने हम चीजें समझ रहे हैं, तभी हमारा जीवन जो है ये भगवान की सेवा में अर्पण होना चाहिए। अब इसके आगे बहुत योनियों में बहुत भोग लिया हमने, बहुत सारा अलग अलग योनियों में कीड़े मकोड़े में, हाँ जहां तक के इंसेक्ट्स कीटक मछली पेड़ योनि में पक्षी योनि में जानवर की योनि में, हाँ कितने जीव भगवान ने बनाए, बंदर की योनि में और पिग की योनि में, हर योनि में हमने यात्रा किया है, सब यात्रा हमारा खत्म हो चुका है। इसका प्रूफ क्या है, मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ, इसका ही एक प्रूफ है कि आपने सारा जगह पर यात्रा कर चुके हैं। यहां तक कि जो विष्ठा के अंदर होता है ना कीड़ा, उसको चोमर कहते हैं, जो इट्स लाइक वर्म इन द स्टूल, वो सभी योनि से हम गुजरे हुए हैं। हाँ हमारे लिए तुच्छ चीज जो है वो उस कीड़े के लिए बहुत आनंद की वस्तु है। जो गटर है जो सुअर के लिए तो एकदम अमृत जैसा है, हमारे लिए तो नाक बंद कर देते, लेकिन उसके लिए तो वो फ्रेश वहां से निकल रहा है तो उसको आनंद आ रहा है उसके अंदर। ऐसे प्रकार के सब खिलौने अच्छे बड़े बुरे सब आनंद हमने प्राप्त कर चुके हैं हम लोग, फिर उसके अंत में हमने अभी भगवान ने हमको मनुष्य जन्म दिया है, इसको देवताओं के जन्म से भी श्रेष्ठ माना गया है। इंद्र आदि 33 करोड़ देवता भी मनुष्य जन्म के लालायित रहते हैं, क्योंकि इंद्र के जीवन में और देवताओं के जन्म में क्या निगेटिव बात है, अब बोले क्या अच्छी बात है, सब लोग अच्छे बड़े बड़े वाहनों में घूमते रहते हैं, अप्सराएं सुंदर इतनी शरीर से बूबी नहीं आती है, सुगंध आते रहता है शरीरों में, उनको प्राप्त होता है शरीर ऐसा उनका, इतने अच्छे अच्छे भोग हैं, तो वो कैसा नीचा हो गया, क्योंकि इतने दिव्य भोग की प्राप्ति की वजह से वो आसक्त हो जाते हैं, छोड़ नहीं पाते हैं। अरे हमारे पास थोड़ा बहुत धन हो गया तो हम कितने उससे आसक्त होते हैं, अरे किसको देते नहीं है, इसको बनाए रखते हैं, वी बिकम अटैच्ड। यहां का तो तुच्छ सब खुशियां हैं, यहां की देवताओं का आनंद सोचेंगे तो हमको चक्कर आके हम गिर जाएंगे। महाराज जी हमारे कहते हैं कि अगर अभी हमको सदेह स्वर्ग में भेजेंगे तो वहां की सुंदर स्त्रियों को पुरुषों को देखकर हम सब लोग मूर्छित हो जाएंगे काम वासना की वजह से, इतना सौंदर्य है वहां पर, जो हमारी काम भावना हमको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे हम लोग, इसलिए हम लोग अभी यहां पर बैठे हैं, वहां पर नहीं है, हमारी योग्यता नहीं है वहां पर जाने की। तो इतना आनंद होने पर भी होने के बाद में सब देवता लोग इस आनंद को छोड़ने में बहुत कष्ट होता है उनको, और ये जीवन कैसा है, यहां पर बहुत सारा दुख है और थोड़ा सुख है, इसलिए विरक्त होना जो है यहां आसान है, इट इज वेरी इजी टू बिकम डिटैच्ड, जो वहां पर बहुत मुश्किल है। इसलिए मनुष्य के योनि जो है 400,000 मनुष्य योनियों का वर्णन किया है, वो शरीर के ऊपर नहीं होता है, वो चेतना के ऊपर होता है, एज पर द कॉन्शियसनेस चेतना के स्तर पर 400,000 योनियों का वर्णन किया है, जो सबसे श्रेष्ठ योनि ब्रह्मा जी की है सत्यलोक की, लेकिन उन 400,000 योनियों में मनुष्य योनि जो है वो सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। और हम सब लोग भाग्यवान जीव है क्योंकि इसी जन्म में हम सब लोग भगवान के चरणों की शुद्ध भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। और देवताओं में कोई गारंटी नहीं है। क्या प्रूफ है उसका? अभी अभी इंद्र ने कृष्ण का अपमान किया तो भगवान ने गोवर्धन को उठाया और उनको समझ दिया, अरे बाबा मैं भगवान हूं, अब फिर गलती मत करना, ऐसे माफी मांगते हैं, दंडवत करते हैं, अभिषेक करते हैं, स्तुति करते हैं, चले जाते हैं अपने धाम में। और उनका छह महीने का हमारा दिन, 6 महीना उनका एक दिन होता है, तो कुछ साल बीतते हैं यहाँ पर, उनके कुछ दिन बीतते हैं, मतलब लास्ट फ्राइडे, ऐसा इंद्र बोल सकते हैं, लास्ट फ्राइडे मैं गड़बड़ किया था तो भगवान ने गिरिराज को उठाया था और मेरा गर्व हरण करके खंडन करके मुझे जगह पर लाया था वापस एक बार। और दिस फ्राइडे क्या होता है, मतलब यहाँ के कई साल बीत चुके हैं, दिस फ्राइडे क्या होता है, भगवान जो है वो नरकासुर को मार के, नरकासुर से इंद्र की माता के जो कुंडल है जो नरकासुर ने छिने थे इसलिए भगवान ने उसका वध कर दिया। फिर वो कुंडल लेकर भगवान कहते हैं चलो लौटा के आते हैं इंद्र की माता को, और सत्य अपनी पत्नी है प्रिय सत्यभामा उसको कहते हैं चलो आप भी साथ चलेंगे, आप भी थोड़ा स्वर्ग की सैर कर लेना, और आपको भी इच्छा थी कि प्रजक्त का पेड़ आपको भी चाहिए था, और आप भी थोड़ी नाराज थी कि रुक्मिणी के क्या कहते हैं उसको, रुक्मिणी नहीं सत्यभामा के आंगन में था और रुक्मिणी के आंगन में उसके फूल गिरते थे पारिजात के, तो चलो आपके लिए भी एक अलग पारिजात लेके आते हैं, वहां पर स्वर्ग लोक में इंद्र के नंदन वन में बहुत सुंदर सुंदर श्रेष्ठ प्रकार के प्रजक्त होते हैं पारिजात, आप अपनी इच्छा से ही उठा लेना एक हाथ और आपके यहाँ पर चलो साथ में चलो। तो उसी इंद्र की माता के छिने हुए कवच कुंडल नरकासुर को मार के भगवान बड़ी अनुकंपा से स्वयं निकल रहे, ऐसे नहीं बोल रहे अरे उद्धव जी जाओ लौटा के आओ, सत्यकी जाओ लौटा के आओ, ऐसे नहीं बोल रहे, खुद जा रहे हैं अपनी पत्नी को लेके जा रहे हैं। और जाते हैं और उनका स्वागत होता है, इंद्र भगवान स्वागत भी करते हैं, उनका चरण धोते हैं, स्तुति करते हैं, उनको उपहार खिलाते हैं, गौरव करते हैं उनका, और उनको कुंडल लौटाते हैं, माता पिंड लौटा लेती है कुंडल अपने, और भगवान फिर उनसे बहुत ही प्रेम से विदा लेकर, जानकारी है ना कि भगवान हमारे पास आए हैं, उनका आदर सत्कार हो रहा है, पूरे जागरूक है वो, और भगवान निकलते हैं। ऑन द वे भगवान कहते हैं अरे देवी ये देखो ये नंदनवन है इंद्र का, इससे आप पारिजात ले लो, तो एक चुन के पारिजात ले लेती है। जैसे ही पारिजात लेती है इंद्र के सैनिक आते हैं, बोले यहां पर किसने किसको पूछने आपने लिया है, यहां पर किसी को लेने की परमिशन नहीं है, और इंद्र को खबर कर देते हैं कि जाते जाते कृष्ण भगवान ने पारिजात को उठा लिया है। तो इंद्र अभी अभी उनको सत्कार किया था परम भगवान के रूप में, लेकिन इतनी आसक्ति है भूल जाते हैं, तत्क्षण भूल जाते हैं, और सेना लेकर भगवान पर आक्रमण करते हैं, और भगवान लीलाया उनका परास्त करते, फिर उनको होश में लाते हैं, भैया मैं वही हूं अभी आया था ना घर पे तुम्हारे, ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि इतना भोग वहां पर है कि क्षण क्षण में भूल जाते हैं क्या हो रहा है, बार बार जगाना पड़ता है, अरे भैया वही कृष्ण भगवान वही है, वरा भगवान भी वही थे, वो नरसिंह भगवान भी वही थे, वही सब रूप है उनके, भूलना मत बीच बीच में, लेकिन भोग का इतना इतना प्रभाव है वहां पर कि कदम कदम पर देवताओं को याद करना पड़ता है कि कौन है भगवान और क्या भक्ति होती है। और यहां पर ऐसा नहीं, भगवान ने यहां पर इनफ दुख दिया आपको, बार बार याद कर सकते आप, वहां पर इतना सुख दिया है कि वो दुख का बीच में कोई लवलेश ही नहीं है, तो कैसे याद करेंगे उनको, कोई चांस नहीं, बीच में इंटरवल नहीं है बीच में कुछ, यहां पर बहुत इंटरवल है। हाँ तुकाराम महाराज क्या कहते हैं, सुख जवा पाड़े दुख पर्वता एवड़े, और पर्वता एवड़े दुख जब हम सहन करते हैं तब जवा पाड़े दुख सुख मिलता है, मतलब इतना पर्वत उपसने के बाद में सुख कितना मिलता है, इतना सा, फिर अगर उतना वापस प्राप्त करना है तो क्या करना पड़ेगा, फिर पर्वता एवड़े दुख भोगना पड़ेगा। तो भगवान का याद करने का बहुत अच्छा स्कोप है आपको, इधर अगर आप जागरूक रहेंगे तो आपको याद आती रहेगी भैया वो है उधर, यहां पर बहुत कष्ट है, इसीलिए मनुष्य योनि को श्रेष्ठ माना गया है। क्यों? द अपॉर्चुनिटी टू बिकम गॉड कॉन्शियस इज मोर हियर इन दिस योनि, अपॉर्चुनिटी टू एंजॉय इज मोर देयर, इसलिए हमारा मन वहां लगा रहता है, चलो यहां कुछ यज्ञ करेंगे, कुछ नमस करेंगे, कुछ ये करेंगे, व्रत करेंगे, ताकि स्वर्ग में निवास मिलेगा, भोग शरीर में, यहां पर मल मूत्र नहीं होगा, यहां पर बू नहीं होती है, बदबू नहीं आती है, हर जगह से खुशबू आती है, एक एक कोस तक सुंदर सुंदर युवतियां होती है, उसमें भी लेवल होते हैं, अप्सरा फिर रंबा फिर मेनका, ऐसे अलग 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 उनका भोग करेंगे, अच्छा अच्छा भोग खाएंगे, और फूल ऐसे होते हैं कि जो मुरझाते नहीं है, आपने सुना ना बहुत सारी कहानी में देवता ने पुष्प उष्टि के लिए, अरे इतने फूल आते कहां से, क्योंकि जब फूल आते हैं तो मुरझाते नहीं है वहां पर, जो इंद्र ने माला पहनाई नील कमलों के अर्जुन को, वो हमेशा वैसे ही रही युद्ध में पूरे, युद्ध के पहले उन्होंने पहनाई थी अपने पुत्र अर्जुन को, वैसे ही रही माला वो, क्योंकि वहां के हर फूल जो होते हैं वो अनंत काल चिरंतन काल तक सुगंधित रहते हैं और कभी मुरझाते नहीं है, खाली उगते हैं बस, खाली मुरझाते नहीं कभी। और उनके शरीर से न मूत्र निकलता है, न मल निकलता है, न पसीना निकलता है, न मेद निकलता है, न चर्बी या कोई म्यूकस या बाइल या स्टूल यूरिन कुछ नहीं निकलता है। इसलिए स्वर्ग लोग में टॉयलेट्स नहीं होते हैं, नो टॉयलेट्स, नो सुवेज, नो गंदी नाली, नथिंग। इतना बढ़िया जगह पे जाएंगे तो कैसे याद करेंगे भगवान। इसलिए आगे कथा सुंदर आती है, मैं बताऊंगा आपको। एनीवेज, सो इस बीच में गंगा द्वार में बार बार वराहदेव की याद आ रही है, इसका कनेक्शन यहां पर है। क्योंकि जब वराहदेव ने हिरण्याक्ष का वध किया तो उन्होंने आकर गंगा द्वार में स्नान किया है और वहां पर विश्राम किया है हिरण्याक्ष को मारकर वराह भगवान ने। और वहां से फिर गए, वो कहां गए, एनी आइडिया? वहां पर वो गए हैं वृंदावन धाम, और जमुना जी मथुरा में एक घाट है विश्राम घाट, जहां पर वराहदेव ने विश्राम किया, इसका नाम ही विश्राम घाट है। वराहदेव ने वहां बैठकर पृथ्वी देवी को उठाया था ना जमीन से, मतलब सागर से, तो उस संबंध से भगवान वराहदेव और उनकी प्रिय सखी पृथ्वी देवी भूदेवी, इनके समागम से भौम की उत्पत्ति हुई, जो आगे जाकर नरकासुर के नाम से प्रसिद्ध हो गया। भगवान का पुत्र है वो, भूदेवी और वराहदेव का पुत्र है, इसका नाम भौम था, क्या नहीं, भूमि का पुत्र भौम। फिर जाके असुर का संग किया, फिर क्या नाम बन गया, भौमासुर। उसी ने भगवान इंद्र के माता के कुंडल छीने, फिर भगवान ने उसका वध किया। इसका मतलब भगवान का पुत्र होगा लेकिन वो अगर असुरी प्रवृत्ति का होगा तो भगवान उसका नाश करने में हिचकिचाते नहीं है। और राक्षस भी होगा, जैसे कि प्रहलाद राक्षस कुल में जन्मे थे, बलि महाराज राक्षस थे, लेकिन फिर भी उन्होंने भक्ति किया तो भगवान ने उसका उद्धार किया। इसका मतलब हमारा कुल ब्राह्मण का नहीं है, हम तो बोलाने चमार कुल में जन्मे थे, हमारे तो कोई योग्यता नहीं है, ऐसे कहने की कोई जरूरत नहीं है। चाहे आप ब्राह्मण कुल के हो, शूद्र कुल के हो, राक्षस कुल के हो, या किसी गीद कुल के हो, गीद में क्या हुआ है जटायु, पक्षी में क्यों कौन हुए हैं गरुड़, हाँ, अरे वेश्याओं में नहीं, भी कई ऐसे वेश्याओं का कथा आते हैं कि वेश्याओं ने भी भगवान का नाम लेकर परम गति को प्राप्त कर लिया है। तो कोई यहां पर हिंड्रेंस नहीं है, आप बहाने बना सकते नहीं, देयर इज नो रीजन टू गिव एनी बहाना, ओनली डिजायर इज लैकिंग, इच्छा नहीं है इसलिए हम लोग बहाना बनाते, अरे ऐसा है, अरे प्रभु जी क्या करें, हमारे घर में तो 3 बच्चे हैं प्रभु, माता बीमार रहते हैं हमेशा, हमारे ये समस्या है, लोन है हमारे पास, भाई भक्ति करने को टाइम नहीं मिलता समय नहीं मिलता, हाँ, फिर शाम को 2 घंटा टीवी देखेंगे, क्या करें प्रभु, दिन भर इतना मेहनत करते हैं, इतना दिमाग परेशान होता है, 2 घंटा तो कर्मणुक करनी चाहिए प्रभु। फिर आप उनको देखेंगे पिक्चर थिएटर में, अरे प्रभु आपको टाइम नहीं था, नहीं प्रभु जी परिवार ने बहुत फोर्स किया, मुझे इच्छा नहीं थी लेकिन उनको जाना लेके पड़ा। आजकल के लोग मालूम है ना, परिवार के लोग इतना डिमांड करते हैं, जाना पड़ता है। फिर मॉल में देखेंगे, बोले अरे क्या मॉल में कैसे आप, आपको समय नहीं था, नहीं प्रभु जी गेस्ट आए थे उनको बोला मॉल में शॉपिंग करने के लिए जा रहा हूं, हाँ सब करने को समय होता है लेकिन भगवान का नाम लेते हैं एकदम समय की पूंजी खत्म हो जाती है, एकदम ऑटोमेटिक ऑल डिपॉजिट गेट्स ओवर इमीडिएटली, समय का डिपॉजिट खत्म हो जाता है तुरंत। इसलिए मनुष्य जीवन का भाग्य तब प्राप्त होगा जब हमारे लिए इच्छा उत्पन्न होगी। फिर कोई कुल की जरूरत नहीं है, कोई विद्या की जरूरत नहीं, कोई अच्छे जन्म की जरूरत नहीं है, ना सुंदरता की जरूरत है, ना धन की जरूरत है। कुंती देवी कहती है जन्मैश्वर्य श्रुति श्रीभीर एधमो पुमान, क्या कहती है कि अच्छा जन्म, अच्छे कुल में जन्म, बहुत सारा सौंदर्य, बहुत सारा धन और बहुत सारी विद्या, ये जो है भक्ति के लिए प्रतिकूल है, डेट्रीमेंटल, क्योंकि ये चारों चीजों से गर्व उत्पन्न होता है। अब अगले मैं ब्राह्मण कुल का हूं, गौड़ शास्त्र ब्राह्मण, मेरा भारद्वाज सप्तऋषि में जो गोत्र है वो मेरा गोत्र है, एकदम कॉलर टाइट हो जाती है। बाद बोलेंगे हम इतने पढ़े लिखे हैं, हम MBBS है, MD है, हमने इतना शास्त्र पढ़ा है, इतने श्लोक मुझे याद है, विद्या गर्व उत्पन्न हो जाता है। और जो ब्यूटीफुल है उनका तो बोलने की जरूरत ही नहीं है, जरा से ब्यूटी से भी गर्व करते हैं ना, तुरंत लोगों से बात नहीं करते हैं, ब्यूटीफुल लोगों को कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है, जन्मजात गर्व होता है उनको। और धन का गर्व कितना होता है, कितना क्रूप होने पर अगर धन होता है तो लोग भी दंडवत करते हैं, महाराज दंडवत प्रणाम सलाम साहब, कितना भी क्रूप हो, शूद्र कुल का हो, चमार कुल का हो, दुर्वर्तनी हो, गंदा व्यक्ति हो, शराबी हो, लेकिन धनवान हो तो सलाम साहब, उसको भी बहुत गर्व होता है उसका, तो इससे भक्ति नहीं होती। कुंती देवी कहती है त्वम अकिंचन गोचरम, जो हृदय से अपने आप को दीन मानता है, ये सब कुछ होने पर भी समझता है कि ये सब नश्वर है, कभी भी खत्म हो सकता है, इसके ऊपर विश्वास करके फायदा क्या है? धन दौलत ने आज किसी को साथ दिया है क्या? लक्ष्मी देव चंचला का नाम है उसका, वो एक जगह टिकती नहीं है, केवल नारायण के कदमों में वो टिकती है, और जो नारायण की भक्ति करते हैं उनके घर में वो चिरंतन निवास करती है। लेकिन जो नारायण के अलावा रावण जैसे सीता का भोग लेना चाहते हैं, लक्ष्मी का भोग लेना चाहते हैं, वो हमेशा चंचला है, चली जाती है वो। तो आज के राजा जो है कल के रंक बन जाते हैं, कल के भिखारी बन जाते हैं। ऐसा हमने देखा है कितनी पुश्तियां, धनवान पुश्तियां एकदम अभी बैंकक्रप्ट हो गई है, देखते हैं ना हम लोग। टर्न बाय टर्न एवरीबडी हैज टू कम टू दैट सिचुएशन। इसलिए हमें तो वरादेव की कथा आई थी, वरादेव का स्थान वहां पर है वराहकुंड, जहां पर तो ब्रह्मगिरी में एक बीच में मैं थोड़ी सी कथा बताने को भूल गया, क्योंकि बहुत उपाख्यान बोलते हैं उसको, बहुत सारे ब्रांचेस है कथा में। तो जैसे ही ये हरे कृष्ण, जैसे ही हमारे भाई साहब सो रहे हैं, उनको जगाइए, तो जैसे ही वो तपस्या कर रहे थे, मैंने कहा ना आपको जल सेवन, पर्ण सेवन, जल सेवन, वायु सेवन, नो सेवन, तभी गंगा देवी को कष्ट हुआ, अरे ये तो मुझे निकालने के लिए तपस्या कर रहे हैं। तो गंगा देवी ने अपनी सहेली को भेज दिया, जिसका नाम तो जटिला, वो भी नदी थी, उसको व्यक्ति रूप में भेज दिया और जाओ बोला कि आप उसकी पत्नी का रूप धारण करो, क्योंकि वो तो सुंदर थी, आप जानते ना कथा मैंने सुना है आपको, बहुत सुंदर थी वो। तो वो जटिला अहिल्या का रूप धारण करके आई, क्योंकि वो अहिल्या को छोड़ के आए थे ना अपने घर में आश्रम में, वहां से पर्वत में गए थे गणेश भट्ट के आदेश पर। तो वहां पर वो अहिल्या के रूप में आती है और वो अलग अलग अपने शरीर के इससे उनको मोहित करने का प्रयास करती है। लेकिन गौतम ऋषि इतने बड़े ऋषि थे कि वो देखते समझते कि नकली है, तुरंत छाप देते हैं, जटिला तुम सुखी बन जाओगी, शुष्क हो जाओगी। जटिला बिल्कुल अपने होश में आती है, अपने स्वरूप में आती है, माफी मांगती है उनकी कि मैंने गंगा देवी की विनती से काम किया था। तो कहते तो कोई बात नहीं, मैं आपको उस शाप देता हूं कि जब गोदावरी प्रकट हो जाएगी तब आपका जहां उनका मिलन होगा वहां पर आप फिर जलायमान हो जाओगी और आपका भी कल्याण होगा। तो वहां पर अहिल्या नदी उत्पन्न होती है, जो जटिला नदी थी वो अहिल्या नदी के नाम में उसका उगम होता है, और वहां पर अहिल्या और वैतरणा नदी का संगम भी ऊपर है। ठीक है, तो फिर वरादेव ने स्नान किया, फिर वहां पर शिव जी के घुटनों का चिन्ह है, जटाओं का चिन्ह है, और एक सुंदर वहां पर ओके तो वहां पर बहुत गुफाएं हैं सुंदर सुंदर। एक तो गंगा द्वार है, मैं आपको बताया जहां पर गंगा जी प्रकट हुई, वहां पर राम मंदिर है, और राम और लक्ष्मण ने अपने दंडकारण्य के वनवास में वहां पर बैठ के भजन किया है, इसलिए वहां पर दो कुंड है, राम और लक्ष्मण कुंड ऊपर, और राम का मंदिर भी है। और यही हमारे महाराष्ट्र के संत की परंपरा में कई नाथ हुए हैं, जानते ना, गोरक्षनाथ, निवृत्तिनाथ और गहिनीनाथ, कई नवनाथ का वर्णन आता है। तो उसमें जो गहिनीनाथ थे उनकी वहां भजन स्थली है, इसी क्षेत्र में त्रंबक क्षेत्र में निवृत्तिनाथ यहां पर आए थे। तो वो जब वहां पर भक्तों को लेकर आए थे तभी एक वाघ आया, शेर आया, और उसके भय से सब लोग यहां वहां भाग गए सब लोग। तो उस समय पर निवृत्तिनाथ ने एक गुफा में गए वो नीचे, और वहां पर गुरु से उनकी मुलाकात हुई, गहिनीनाथ से, वहां ने उन्हें उपदेश सुना है। तो गहिनीनाथ की जो तपस्या की जगह है वो भी ऊपर है। फिर निवृत्तिनाथ ने त्रंबक शहर में आगे जाकर एक जगह है, इसका नाम है गंगा सागर तालाब, वहां पर उनकी समाधि और भजन स्थली है निवृत्तिनाथ की। हाँ ठीक है, तो ये जो जगह है त्रंबकेश्वर, इसके उत्तर दिशा में एक और पर्वत है जो मुझे पता नहीं कहां पर है, शास्त्र में उसका वर्णन आता है, इसका नाम है नील पर्वत, और नील पर्वत पर नीलांबिका देवी का मंदिर है जहां पर ये पर्वत विराजमान है। और यहां पर और एक मंदिर है जिसका नाम है त्रिभुवनेश्वर मंदिर, जो हमारे महाराष्ट्र में एक बड़ी व्यक्ति हुई है अहिल्या होलकर, आपने सुना होगा, उसने वहां पर त्रिभुवनेश्वर मंदिर का निर्माण किया है। और इसी जगह पर जहां पर उन्होंने गंगा जी का प्रकट किया है, वहां पर स्वयं गौतम ऋषि ने 108 शिवलिंग का स्थापना किया है और उसका पूजन किया है। ये भी 108 शिवलिंग अभी पूरे वहां पर प्रकट नहीं है, लेकिन वही उनका स्थान है जहां पर 108 शिवलिंग विराजमान थे। और ये जगह जो है एक सानंद शिवलिंग करके भगवान शिव का लिंग जो है, ये गंगाधर पंत आराधी नाम के जो एक व्यक्ति थे, उन्होंने शिवजी का भजन किया था तो शिवजी ने स्वयं आकर एक वालुकामय लिंग उनको भेंट दिया था, अपना लिंग उनके पूजन के लिए। वो लिंग जो है वो नील पर्वत पर विराजमान है, इसका नाम है सानंद शिवलिंग। जो वहां पर ये जो शिवलिंग है त्रंबकेश्वर, ये भी वालुकामय है, मतलब कुछ काले पत्थर के होते हैं और कुछ वालुका के होते हैं। और कई जगह पर शंकर भगवान ने वालु के जो लिंग है भक्तों को दिए हैं भेंट के रूप में। तो कुछ पारे के होते हैं, कुछ जल के होते हैं, ये भगवान की शक्ति से प्रकट किए हुए हैं और यहां पर विराजमान है। इस जगह पर अभी कई स्थान, जैसे हम देख रहे हैं अभी त्रंबकेश्वर में, हम पहले जाते थे तो हमने पूरा वीडियो शूटिंग भी किया है, फोटोग्राफी भी किया है, लेकिन आज आतंकवाद के वजह से वहां पर सब बंद है। मतलब आपके पास रिकॉर्ड जो है वो नहीं आएगा, फोटोग्राफी नहीं होगी और या तो खरीदना पड़ेगा, इसलिए कम कम हो जाएगा, दर्शन भी कम होते जाएंगे। इस तरह से एक एक स्थान जो है वो लुप्त होते जाते हैं कलयुग के प्रभाव से, राक्षसी प्रवृत्तियों के प्रभाव से, हमारे ना भक्त होने की वजह से, हमारे ना देखभाल करने की वजह से एक एक स्थान जो है वो नष्ट होते जाते हैं। उस तरह पर यहां पर अनंत तीर्थों का वर्णन शास्त्र में आता है। बिल्व तीर्थ है, इंद्र तीर्थ है, नीलांबिका तीर्थ है, कर्म तीर्थ है, ऐसे कई 50 तीर्थों का नाम मैंने पढ़ा, कुछ नाम मैंने यहां लिखे, उस समय भी लुप्त हो चुके हैं। और कुछ कुछ है लोगों को पता नहीं है, एक पीढ़ी होती थी उनको पता था, वो पीढ़ी ने दूसरी पीढ़ी ने इंटरेस्ट नहीं लिया, वो पीढ़ी गुजर गई, बच्चों को पता नहीं है, फिर वो स्थान क्या करते हैं, बिल्डिंग बांध देते हैं, उसको तोड़कर फ्लैट करते हैं, प्लॉट करके बेच देते हैं और बिल्डिंग बांध देते हैं। ऐसे कई पवित्र स्थान इस प्रकार से कलयुग में लुप्त होते जाते थे। लेकिन हमको समझना जरूरी यह है कि हम ऐसे स्थान पर आए हैं जो अनंत तीर्थ पवित्र स्थानों का संगम है। यहां पर अनंत तीर्थ स्थान है, यहां पर ऋषि मुनि और अनेक नाथ, भगवान स्वयं, सप्त ऋषि, नदियां, पहाड़, पर्वत, जितने भी तीर्थ हैं सब एकत्र होकर यहां पर निवास करते हैं। और इसलिए हमको भी यहां पर आके भजन करना चाहिए, क्योंकि संतों के संग में भजन जो है बड़ा अनुकूल हो जाता है। ऐसे हम सब लोगों को यहां पर आके भगवान के भजन में रुचि देनी चाहिए। त्र्यंबकेश्वर का थोड़ा सा इतिहास बताता हूं आपको। त्र्यंबकेश्वर में त्र्यंबकेश्वर में जैसे गौतम ऋषि को भगवान ने, शंकर जी ने वरदान दिया कि मैं यहां पर प्रकट हो जाऊंगा, तो उस लिंग के रूप में प्रकट हुए। वो एक अद्भुत लिंग है, बाकी सारे लिंग जो होते हैं वो ऐसे ऊपर आते हैं, है ना, और गोल होता है और फिर ऐसे होता है। ये जो है ऐसा क्या कहते हैं उसको, खोलगट है जमीन में ऐसा है, और उसमें तीन चेहरे का दर्शन है, ब्रह्मा जी, शिव जी और विष्णु जी, तीनों का दर्शन उनके अंदर है। और उसमें तीन स्लिट्स भी है जो आपको नजर नहीं आएगा, ध्यान देखना पड़ेगा आपको। वो तीन स्लिट जो है वो सत्व, रज और तमोगुण के तीन स्लिट्स हैं उसके अंदर, जो छेद के रूप में दिखाई पड़ते हैं, और वहां से नीचे से गंगा जी प्रकट हो जाती है। बहुत दिव्य स्थान है ये। और चैतन्य महाप्रभु, जैसे मैंने आपको बताया कि उन्होंने वादा किया था पार्वती जी को कि मैं कलयुग में आऊंगा, भगवान कृष्ण ने, और यहां पर हरिनाम संकीर्तन सबको प्रसाद के रूप में बांटूंगा। तो जब वो दक्षिण भारत की यात्रा में निकले थे तो वो अगस्त्य मुनि के आश्रम में गए और वहां से वो नासिक क्षेत्र में आए, पंचवटी में उन्होंने आराम किया, रामकुंड में स्नान किया, और त्र्यंबक में आकर उन्होंने शिवजी को दर्शन करते हुए बहुत दिव्य कीर्तन किया। यहां पर जहां पर अभी हम लोग बैठे थे ना, जब करते करते वो पूरा जो अभी बैरिकेड बना दिया है, सब कुछ जगह नहीं है, लेकिन पूरे आवार में चैतन्य महाप्रभु ने बहुत दिव्य हरिनाम संकीर्तन किया है, क्योंकि शंकर जी और भगवान कृष्ण जो है इनका बहुत प्रेम का रिश्ता है। इसके बारे में हम कथा आपको अगले स्थान में बताएंगे। शिव जी का जो गौरव है, शिव जी शंकर भगवान का जो महात्म्य है, उनका जो लीला गौरव है, वो हम उनकी जगह आपको बताएंगे। ठीक है, जय जय श्री राधे श्याम।